आप सुन रहे हैं कहानियाँ जो आपको हंसाती है, गुदगुदाती है, रुलाती है और इस भीड़ भाड़ वाली जिंदगी में दो पल सुकून की दे जाती है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त प्रत्युष और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं एक नई कहानी जिसका नाम है बारिश की वो रात।
बारिश बहुत तेज हो रही थी और अंधेरा भी बहुत घना था। उस तेज बारिश और घने अंधेरे में रोहित के लिए कार चला पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। रोहित रुकने के लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढ रहा था, लेकिन उस हाईवे पे दूर दूर तक ना तो कोई होटल था, ना कोई सराय और ना ही किसी का घर। रात के तकरीबन 1 बज रहे थे और वो हाईवे एकदम सुनसान था।
ट्रेन का टिकट ना मिल पाने की वजह से 27 साल का रवि दिल्ली से अपने घर पटना के लिए अपने कार से ही रवाना हो गया। उसने सोचा था कि रात को तो हाईवे खाली रहता है और कार चलाने में आसानी, तो वो तेज़ी से कार भगाएगा और दूरी को कम समय में तय कर लेगा।
लेकिन इस बात का उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि आधी रात में उसे भारी बारिश का सामना करना पड़ सकता है और भारी बारिश के साथ साथ उसे किसी और का भी सामना करना पड़ सकता है। बारिश का पानी इतनी तेजी से कार के शीशे पर पड़ रहा था कि रवि को बहुत मुश्किल से सड़क दिखाई दे रही थी। कुछ दूर चलने के बाद रवि को हाईवे के दूसरे साइड एक पतली सी सड़क दिखाई दी जो शायद किसी गांव की तरफ जा रही थी। रवि ने सोचा कि इस तेज बारिश में, जो कि रुकने का बिल्कुल नाम ही नहीं ले रही है, इसमें कार चलाना बहुत ही खतरनाक है और हाईवे पर खड़े रहना तो उससे भी ज़्यादा खतरनाक। इसलिए वो गाँव के लोगों से मदद की उम्मीद लिए अपनी कार को उस पतली गांव वाली सड़क की तरफ घुमा दिया। उस गांव वाले रास्ते पर रवि अभी 1 ही किलोमीटर चला होगा कि उसे एक घर दिखा। रवि उस घर से मदद की उम्मीद लिए अपनी कार को सड़क की दूसरी तरफ खड़ा किया और बारिश में बचता बचाता कैसे भी उस घर के नीचे आकर के खड़ा हो गया। रवि उस घर का बेल बजाने ही वाला था तब तक एक बहुत जोरदार बिजली कड़की। रवि बिजली की उस कड़कन से सिहर सा गया, फिर वो कैसे भी अपने आप को नियंत्रित करके उस घर का बेल बजाया। लगभग 2-3 बार बेल बजाने के बाद उसे उस घर का दरवाज़ा खुलने का एहसास हुआ। जब दरवाज़ा खुला तो रवि उस नज़ारे को देख करके एकदम जम सा गया, क्योंकि उसके ठीक सामने एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की जिसकी नीली आँखें, सुनहरे बाल, गोरा बदन, जैसे मानो कि कोई स्वर्ग की अप्सरा हो, ठीक उसके सामने खड़ी थी।
जी आप कौन और इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रहे हैं?
उस लड़की की आवाज़ सुनकर रवि अपने ख्यालों से बाहर आया। रवि
जी, मेरा नाम रवि है। मैं अपनी कार से लखनऊ जा रहा था। रास्ते में बहुत तेज बारिश होने लगी जिस वजह से मुझे कार चलाने में दिक्कत हो रही है और आसपास कोई होटल या सराय भी नहीं है, तो इसलिए मैं आपके पास मदद के लिए आया हूँ। प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए।
रवि अभी अपनी बात ख़त्म ही किया होगा कि तब तक उस लड़की के पीछे से एक आवाज़ आई।
कौन है बेटा, कौन है दरवाजे पे?
रवि ने सर उठा करके देखा तो एक 70 साल के बुजुर्ग हाथ में छड़ी लिए हुए दरवाजे की तरफ धीरे धीरे आ रहे थे।
लड़की बोली,
ये कोई रवि हैं दादाजी, इतनी भारी बारिश हो रही है तो उसमें हमसे मदद मांगने आए हैं।
जब वो बुजुर्ग व्यक्ति पास आया तो रवि ने उन्हें नमस्ते किया।
दादाजी बोले, अकेले हो बेटा?
रवि, जी सर।
दादाजी, तो अंदर आओ, बारिश में क्यों भीग रहे हो?
बेटी, इन्हें तौलिया दे दो।
रवि अंदर आकर के तौलिया से अपना सिर पोंछने लगा और पूछते पूछते लड़की से पूछा, तो आप और आपके दादाजी रहते हैं?
लड़की बोली, जी मेरी दादी भी हैं और वो अभी सो रही हैं।
लड़की ने रवि को उसका कमरा दिखा करके और किसी और चीज़ की ज़रूरत होने पर आवाज़ लगाने के लिए कहकर चली गई। दादाजी भी रवि को गुड नाइट बोल करके सोने चले गए। रवि भी अपने साथ लाए अपने बैग में से अपना पैजामा और टी शर्ट निकाला और पहन करके अपने हाथ में अपना मोबाइल लिए बिस्तर पर लेट गया। बिस्तर पर लेटे लेटे मोबाइल चला रहा था। मोबाइल में समय 1:30 बज रहे थे। रवि भी थका हुआ था तो मोबाइल को दूसरी तरफ रख करके सो गया। रात के तकरीबन 2:30 बज रहे थे। रवि सो रहा था, अचानक उसके कानों में किसी की रोने की आवाज़ आई। रवि धीरे से अपनी आँखें खोला तो देखा
कि वही लड़की जो उसको तौलिया दी थी उसके कमरे में उसके बेड पर बैठ करके रो रही थी। रवि तुरंत उठ करके बैठ गया और उसे पूछा कि क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो। वो लड़की कुछ बोली नहीं, लेकिन दरवाजे की तरफ रवि को अपने उंगलियों से इशारा करते हुए कुछ देखने के लिए कही। रवि थोड़ा सा घबराया और वो दरवाजे की तरफ जाने लगा। अभी वो दो कदम ही आगे बढ़ा था तब तक उसे एहसास हुआ कि दरवाजा तो अंदर से बंद है, फिर ये लड़की उसके कमरे में आई कैसे। रवि के हाथ पांव फूलने लगे थे। रवि पीछे मुड़ करके उस लड़की से पूछने वाला था कि वो कमरे में कैसे आई। जैसे ही वो पीछे मुड़ा तो उसके होश उड़ गए। पीछे का नज़ारा बहुत ही खतरनाक था। वो लड़की जो इतनी खूबसूरत थी अब एक भयानक चुड़ैल की तरह दिख रही थी। उसका चेहरा एक तरफ से जला हुआ था, उसकी आंखें सफ़ेद फूती और पथरीली थी। वो लगातार रोए जा रही थी, लेकिन अब उसका रोना किसी लड़की की तरह नहीं किसी भयानक चुड़ैल की तरह था। वो भयानक तरीके से रो रही थी। रवि भागकर दरवाजे के पास गया, वो दरवाजे को खोलने लगा, लेकिन वो दरवाजा खुल नहीं रहा था। वो लड़की अचानक रोना बंद कर दी और धीरे धीरे रवि की तरफ आने लगी। रवि उस दरवाजे को खोल रहा था लेकिन खुल नहीं रहा था। कुछ प्रयास करने के बाद अचानक वो दरवाजा खुल गया। रवि भाग करके उस कमरे से बाहर बरामदे में आया, लेकिन बरामदे में आते ही उसके होश उड़ गए। अभी कुछ देर पहले एक सुंदर सा साफ सुथरा घर अचानक खंडर की तरह दिख रहा था। चारों तरफ मकड़ी की जाले, दीवालों से छूटता हुआ सीमेंट, खंडर सा घर, घना अंधेरा और बारिश के साथ साथ एक बहुत ही अजीब सी तेज बदबू। रवि इस घर के भयानक मंजर को देख करके एकदम डर सा गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था उसे हो क्या रहा उसके साथ। तभी रवि को सीढ़ियों से किसी को उतरने की आवाज आई। उसने सीढ़ियों की तरफ देखा तो दादाजी छड़ी लेकर के नीचे उतर रहे थे। उनका चेहरा नीचे की तरफ था, वो नीचे जमीन को देख रहे थे। वो सीधे आकर के रवि के पास रुके और अपना चेहरा धीरे से उठाते हुए रवि से पूछे, क्या हुआ बेटा, इतने घबराए हुए क्यों हो। रवि उनका चेहरा देख एकदम भयानक सा डर गया। उनकी भी आंखें भूतिया और पथरीली थी, उनका भी चेहरा आधा जला हुआ था और वो भी रोना शुरू कर दिए। उस घर में भयानक रोने की आवाज गूंजने लगी। रवि को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये हो क्या रहा है। वो भाग करके उस घर के दरवाजे के पास गया, उसे उस दरवाजे को खोलने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुल रहा था। रवि ने उस दरवाजे पर लात मारे लेकिन वो दरवाजा नहीं खुला। रवि को अब समझ में आ गया था कि शायद आज वो जिंदा नहीं बचने वाला है। उन दोनों की भयानक रोने की आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी, जो रवि से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। रवि ने अपने दोनों हाथों से अपने दोनों कानों को दबा लिया और अपनी आंखें बंद कर लिया और अंदर ही अंदर भगवान का नाम लेने लगा। तभी उसे याद आया कि वो जिस कमरे में रुका हुआ था उस कमरे में एक बड़ी सी खिड़की थी जो सीधे सड़क पर खुलती थी। वो उस खिड़की के रास्ते से सीधे सड़क पर जा सकता था। रवि भाग करके उस कमरे में गया, उसने अपने गीले कपड़े उठाए, अपना बैग उठाया और उस खिड़की के पास जा करके एक लात पूरी ताकत से उस खिड़की पर मारा। वो खिड़की टूट गया। रवि उस खिड़की के रास्ते से कूद कर सीधे सड़क पर आया और भाग करके अपने कार के पास गया। अपने कार में बैठकर उसने अपना कार स्टार्ट कर दिया और कार स्टार्ट करने के बाद जाने से पहले वो आखिरी बार उस खिड़की की तरफ देखा। वो दोनों भूतिया दादाजी और पोती रवि को ही देख रहे थे। उनकी भूतिया पथरीली आके सीधे रवि को देख रही थी। उनका चेहरा जला हुआ था और इस बार वो रो नहीं रहे थे, उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। रवि वहाँ से भागा और सीधे तब तक नहीं रुका जब तक कि उसे एक भीड़ भाड़ वाला या होटल ना मिल गया। तो दोस्तों, ये कहानी बहुत सारे सवाल हमारे सामने छोड़ के जाती है, जैसे वो भूतिया घर कौन सा था, वो दोनों कौन सी थी, और हाँ, वो दोनों ने उसे मारा क्यों नहीं, उसे जाने कैसे दिया। और साथ ही साथ उस लड़की की दादी जी कहाँ थी। उस लड़की ने बोला था कि मेरी दादी जी अभी सो रही हैं, तो उस लड़की की दादी जी कहाँ थी। तो इसी के साथ मैं इस कहानी को यहीं अंत करता हूँ। और कैसी लगी आपको कहानी ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं इसके लिए, पार्ट टू के लिए, या आप इस कहानी को यहीं एंड मानते हैं, तो प्लीज़ कमेंट में कोई सजेशन भी आप दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। फिर मिलेंगे किसी और कहानी में, या हो सकता है इसी के पार्ट टू के साथ।